का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी नकली नाक का पहला भाग, और इसे लिखा है इब्ने सफी ने। गर्मियों का मौसम था। मैदानों के रहने वाले बड़े लोग गर्मी से तंग आकर रामगढ़ की हरी भरी पहाड़ियों में पनाह ढूंढने जा रहे थे। उनमें विदेशी सैलानी भी थे जिन्हें रामगढ़ की पुरानी इमारतें देखने की ख्वाहिश खींच लाई थी। इस वक्त पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर टट्टुओं और खच्चरों की लाइनें धीरे धीरे रेंगती दिख रही थी। हालांकि यहाँ बस सर्विस भी है, लेकिन बहुत से मुसाफिर सिर्फ कुदरती मंजर का मजा लेने के लिए टट्टुओं या खच्चरों पर सफर करते हैं। लेकिन फरीदी के बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसने सैर करने के लिए यह रास्ता चुना था या फिर वो हमीद को तंग करना चाहता था। वो रास्ते भर उसकी झल्लाहटों से खुश होता चला रहा था। इस वक्त भी वो उसे बात बात पर छेड़ रहा था। एक जगह चलते चलते अचानक हमीद के खच्चर ने ठोकर खाई और गिरते गिरते बचा। हमीद घबरा कर कूद पड़ा। फरीदी को भी अपना खच्चर रोक देना पड़ा। अरे अरे अरे, ये क्या है भाई? फरीदी ने हंस कर कहा। जी कुछ नहीं, बेचारा थक गया है, हमीद मुंह बनाते हुए बोला। अब ये मुझ पर सवार होकर बाकी रास्ता तय करेगा। मैं कहता हूँ आखिर आपको ये सूझी क्या थी? भाई मैंने सिर्फ तुम्हारी सैर के लिए ये सिरदर्द मोल लिया था, वरना मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था। सैर? अरे जहन्नुम में गई सैर। हमीद ने खच्चर की लगाम पकड़कर पैदल चलते हुए कहा। अरे ये क्या? फरीदी बनावटी हैरानी जाहिर करते हुए बोला। तो क्या आप पैदल ही चलोगे? जी हाँ, हमीद झटकेदार आवाज में बोला। धत तेरे की, अजीब बेवकूफ हो। देखो वो एंग्लो इंडियन लड़की तुम्हें इस हालत में देखकर शायद अपने साथियों से तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। हमीद ने मुड़कर देखा तो वाकई कुछ एंग्लो इंडियन मुसाफिर उसकी तरफ देखकर ताना देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उनमें इत्तेफाक से एक लड़की थी। हमीद पर बौखलाहट का दौरा पड़ गया। उसने रस्सी की रकाब पर पैर रखा और उछलकर खच्चर पर बैठ गया, और बैठा भी तो इस शान से जैसे नेपोलियन अपने बड़े से घोड़े पर सवार आल्प्स की मुश्किलों भरे रास्ते को तय कर रहे हों। शाबाश मेरे शेर, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें राह पर लाने के लिए हमेशा एक औरत की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, मेरी पैदाइश के सिलसिले में भी एक औरत की ही जरूरत पड़ी थी, हमीद जल कर बोला। अरे यार तुम तो फिलॉसफी झाड़ने लगे। भाई मैं दरअसल इसीलिए तुम्हारी कद्र करता हूँ। कद्रदानी का शुक्रिया, हमीद ने कहा। इस वक्त आप भी फिलॉसफर ही मालूम हो रहे हैं। क्यों? ई सादत बजोर खच्चर नीस्त। शाबाश शाबाश। मैंने सुना है कि हजरत ईसा का गधा लैटिन बोलता था, मगर तुम तो खच्चर पर बैठकर अच्छी खासी फारसी बोल रहे हो। हमीद के खच्चर ने फिर ठोकर खाई और हमीद गिरते गिरते बचा। पीछे से फिर जोरदार हंसी की आवाज आई और हमीद दांत पीसता रहा। उसे सचमुच फरीदी पर गुस्सा आ रहा था। अगर बस ही से सफर किया जाता तो कौन सी मुसीबत आ जाती? कोई तुक है कि सामान और कर्मचारी बस पर जाएं और खुद खच्चरों पर? फरीदी की ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों पर हमीद कभी-कभी इतना नाराज हो जाता था कि उसे फरीदी की सूरत से नफरत होने लगती थी। ऐसे मौके पर वो बिना ये सोचे समझे कि फरीदी उसका अफसर है जो मुंह में आता था कहता था, और फरीदी वो उसकी चिड़चिड़ाहट से खुश हुआ करता था। वो उस वक्त भी हमीद की झल्लाई हुई हरकतों से खुश हो रहा था। मेरा ख्याल है कि अब तुम इस खच्चर को कंधे पे उठा लो, फरीदी फिर बोला। हमीद ने कोई जवाब ना दिया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे फरीदी के इस जुमले पर उसके जहन में कोई ऐसा जुमला गूंजा हो जिसे ना कहना ही बेहतर था। अमा तुम इस तरह खराब मुंह क्यों बना रहे हो, फरीदी ने कहा। तो मेरा मुंह अच्छा था ही कब, हमीद जल कर बोला। मेरे ख्याल से तो अच्छा खासा था। हमीद फिर चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फरीदी फिर बोला, हमीद
जी,
जरा इन हरी भरी पहाड़ियों की तरफ देखो।
देख रहा हूं।
कैसा लग रहा है?
ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नंबर का गधा हूं और खच्चर पर सवार हूं। हा?
हमीद ने फिर कोई जवाब ना दिया।
हमीद
फरमाइए। इधर उस चट्टान के पास देख रहे हो, वो पहाड़ी लड़की?
फरीदी बोला, मुझे फिलहाल इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये जो पहाड़ी खच्चर है ना, अमा खत्म भी करो। अभी ये कमबख्त मुझे ही खत्म कर देता।
हमीद ने झल्लाकर खच्चर को एक डंडी मारते हुए कहा। खच्चर एक ढलवां चट्टान की तरफ जा रहा था। डंडी पड़ते ही उछल पड़ा। अगर हमीद फौरन ही उसकी गर्दन से न लिपट जाता तो वो उसकी पीठ पर से जमीन पर आ जाता। हमीद ने नीचे उतरकर उसे दो चार डंडियां मारकर लगाम छोड़ दी। खच्चर ढलान में दूर तक चला गया। ए साहेब, ए साहेब! खच्चर वाला पीछे से चिल्लाया और वो एंग्लो इंडियन लड़की अपने साथियों समेत हंसे जा रही थी। हमीद को उसकी सुरीली आवाज जहर मालूम होने लगी। उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। फरीदी भी अपने खच्चर पर से उतर पड़ा। खच्चर वाला हमीद के खच्चर को पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा था।
अरे क्यों भाई, ये क्या किया तुमने?
फरीदी ने हमीद से कहा। अब बेहतर यही है कि आप मुझे किसी ऊंची चट्टान से धकेल दें। हमीद हांफता हुआ बोला,
नहीं नहीं, मैं ऐसा ठीक नहीं समझता।
फरीदी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा,
मैंने बहुत बुरा किया कि मैं आपके साथ चला आया।
हमीद बोला,
लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो न था।
हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं।
गलत, मैं तुम्हें बांध कर ले आता।
फरीदी ने कहा,
भला तुम्हारे बगैर क्या खाक मजा आता?
आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं?
पुराने बदले चुका रहा हूं, तो इसके लिए इतना लंबा सफर तय करने की क्या जरूरत थी?
एडवेंचर।
इतनी देर में खच्चर वाला खच्चर को वापस लेकर वहीं आ गया।
चलो बैठो, फरीदी बोला।
हरगिज नहीं।
अरे अजीब बेवकूफ आदमी हो।
कुछ भी सही।
अरे बैठो बैठो, फरीदी ने दोबारा कहा। मैं इससे ज्यादा एडवेंचर करना चाहता हूँ, हमीद ने कहा।
यानी?
पैदल चलूंगा, हमीद ने कहा। और आपको भी इसकी ही नसीहत करता हूँ, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है।
अरे पगला गए हो, अभी 6 मील चलना है।
तो क्या हुआ?
अरे भाई, ये पहाड़ी रास्ता है, 1 ही मील चलने में काम तमाम हो जाएगा।
यही तो मैं चाहता हूँ,
हमीद लापरवाही से बोला।
अजीब बेवकूफ से पाला पड़ा है।
खुदा का शुक्र है कि बेवकूफ के खच्चर से सामना नहीं पड़ा, हमीद ने कहा।
अरे भाई, अब बैठो भी।
बिल्कुल नहीं, मैं अपने एडवेंचर का खून नहीं कर सकता, हमीद बोला।
अरे जहन्नुम में जाओ,
फरीदी ने कहा और खच्चर पर सवार होकर आगे बढ़ गया। खच्चर वाला खच्चर की लगाम पकड़े हुए हमीद के साथ साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर फरीदी भी लौट आया।
ले भाई, संभाल इसे।
फरीदी अपने खच्चर की लगाम भी खच्चर वाले को थमाते हुए बोला और हमीद के साथ पैदल चल पड़ा।
जरा इन हरी भरी पहाड़ियों की तरफ देखिए,
कैसा लगता है?
हमीद मुस्कुरा कर बोला,
ऐसा लगता है जैसे अभी तुम्हारी मुसीबत आने वाली है, फरीदी ने कहा।
आए, शौक से आए, आखिर मुसीबत भी तो जनाना ही होती है।
यूं तो मौत भी जनाना है मियां साहबजादे,
लेकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी है,
इसलिए मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं, हमीद मुस्कुरा कर बोला।
खैर, शुक्र है कि तुम मुस्कुराए। तो
तुम्हें रोया कब था?
दोनों खामोशी से चलते रहे।
आखिर आपको अचानक
रामगढ़ की याद क्यों आ गई?
हमीद बोला।
जाबिर।
ओह, तो आप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे?
मैं कसम खा चुका हूँ।
क्या आपको उसकी मौजूदगी की कोई पक्की खबर है?
नहीं। यानी?
यहाँ कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जिनकी बिना पर मैं सोचने को मजबूर हुआ हूँ।
हाँ, पर मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक जाबिर से ही हो।
ये तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो हमीद, क्योंकि तुम उसके तरीकों को जानते नहीं हो, फरीदी ने कहा।
क्या तुमने आज तक किसी
कबूतर के पंजों के जहरीले होने के बारे में सुना है?
नहीं।
अगर किसी शख्स की मौत कबूतर के नाखून लगने से हो जाए तो तुम उसे क्या कहोगे?
एक हैरत अंगेज किस्सा जिस पर यकीन ना किया जा सके। इतना ही यकीन नहीं जितना जहर खाने वाले के केस का मिर्गी की बीमारी में बदल जाना।
ओह, रामगढ़ के नौजवान कबूतरबाज रईस की मौत इसी तरह हुई है। वो कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इत्तेफाक से कबूतर का पंजा लग गया और एक घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। बाद में कबूतर के पंजों का मुआयना करने पर पता चला कि उसके एक नाखून पर किसी धातु का एक हल्का सा खोल चढ़ा हुआ था। बहरहाल देखने से वो नाखून ही मालूम होता था और वो खोल जहरीला था। क्या तुम समझते हो कि ये किसी मामूली आदमी का काम है? जाबिर को जहरों के बारे में बहुत जानकारी है। खैर ये भी सही, हमीद बोला, लेकिन आप उसे कहां कहां ढूंढते फिरेंगे? हो सकता है कि वो आपके आने की खबर सुनकर कहीं और चला गया हो।
देखा जाएगा। हम कहां ठहरेंगे?
दिलकुशा में।
ये क्या है?
एक इमारत का नाम। बड़ी अच्छी जगह पर आबाद है।
अच्छा, उस कबूतर वाले मामले को कितने दिन हुए हैं?
लगभग एक हफ्ता। ऐसे अजीबो गरीब हादसे के बारे में तो अखबारों में आना चाहिए था।
हाँ,
इस बात को आउट नहीं किया गया। वाकया दरअसल ये है कि मरने वाले में वो सारी निशानी मौजूद थी जो जहर खा लेने पर जाहिर होती है, इसलिए लोगों ने यही समझा कि उसने किसी तरह का जहर खाया है या उसे जहर खिला दिया गया है। रामगढ़ के एसपी ने तहकीकात के दौरान पता लगाया कि उसने मरने से एक घंटा पहले कोई कबूतर पकड़ा था। उसने यूं ही बिना मतलब कबूतर को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। जिस वक्त वो उसे हाथ में उठाए देख रहा था, उसने पंजे चलाना शुरू किए। इत्तेफाक से उसका एक नाखून एसपी के कोट की बटन में फंस गया। उसने झटके से उसे निकालने की कोशिश की। नाखून तो निकल आया, लेकिन उस पर चढ़ा हुआ खोल कोट ही में अटका रह गया। उसने खोल निकालकर एहतियात से रख लिया और कबूतर को भी अपने साथ लेता आया। उसने पता लगाने के लिए उस नाखून के नुकीले खोल को एक बिल्ली को चुभो कर देखा और लगभग एक घंटे बाद वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। मामला हद से ज्यादा पेचीदा हो गया था, इसलिए उसने इसका बयान अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। पहले तो वो खुद ही छिपे तौर पर कबूतर के बारे में छानबीन करता रहा, लेकिन जब उसे कोई कामयाबी नहीं मिली तो उसने मुझे लिखा। वो मेरा क्लास फेलो रह चुका है, इसलिए मैं उसकी दरखास्त को रद्द नहीं कर सका।
तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया?
हमीद बोला। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम यहां आने के लिए कभी छुट्टी ना लेते।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप मुझे धोखा देकर यहां लाए हैं।
यही समझ लो। अब मैं बहुत जल्द ये नौकरी छोड़ दूंगा, हमीद ने कहा।
लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ सकोगे? फरीदी ने पूछा।
यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है।
हमीद खामोश हो गया। वो चलते चलते थक गया था।
क्यों भाई, क्या वाकई पैदल ही चलोगे? फरीदी बोला।
इरादा तो यही था, मगर खैर,
हमीद ने कहा और खच्चर वाले के हाथ से लगाम लेकर खच्चर पर बैठ गया। फरीदी भी खच्चर पर सवार हो गया। फिलहाल हम लोग माथुर के यहाँ चलेंगे।
अब माथुर कौन?
यहाँ का एसपी जिसने हमें बुलाया है।
फरीदी और हमीद रामगढ़ के एसपी के बंगले में बैठे चाय पी रहे थे। एसपी उन्हें पूरा केस बता रहा था।
बस ये समझ लो कि बिल्ली की मौत के बाद मेरी तहकीकात की गाड़ी ठप हो जाती है, एसपी बोला।
मरने वाले की सोशल पोजीशन क्या थी? फरीदी ने पूछा।
नवाबजादा शाकिर एक बहुत ही अच्छा आदमी था और सोसाइटी में इज्जत की नजरों से देखा जाता था। वो था तो नौजवान ही, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा अक्लमंद था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपना ज्यादातर वक्त कबूतरों या किताबों में गुजारता था। अजीब बात थी कि वो एक कोने में बैठे हुए भी बहुत ही सोशल आदमी लगता था। उससे मिलने वाले उसे अकेला पसंद नहीं करते थे, हालांकि वो 100% अकेले रहना पसंद करता था। ये उसके किरदार का एक अजीबो गरीब पहलू था। किसी ने आज तक उसे किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि उसका कोई दुश्मन ही नहीं था।
थोड़ा बहुत अय्याश जरूर रहा होगा, फरीदी ने पूछा।
मैंने उसके बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनी तो नहीं है जिससे उसका अय्याश होना साबित होता हो, और यहाँ कोई ऐसा रईस नहीं है जो उसके बारे में ना जानता हो।
यहाँ उसके साथ कौन कौन रहता था?
सिर्फ कुछ नौकर। उसका कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं रहता था।
कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद का मालिक हो सके? एसपी कुछ सोचने लगा।
हाँ, एक साहिबा हैं, नवाब अख्तर रोजमा की बेवा।
मरने वाले से उसका रिश्ता?
चचेरी बहन।
उम्र?
यही कोई 24-25 साल। एक 7-8 साल की बच्ची भी है।
मरने वाले से उसके ताल्लुकात कैसे थे?
अच्छे ही थे। वैसे कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि कुछ कहा जा सके।
तुमने उससे इस केस के बारे में बातचीत तो जरूर की होगी?
हाँ, वो बहुत गम में थी।
मेरा मतलब ये नहीं, तुमने उससे बातचीत करने के बाद क्या नतीजा निकाला?
यही कि उस पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता।
और शक ना करने की वजह?
अरे, वो एक बहुत ही शरीफ औरत है।
ये तो कोई वजह ना हुई। आखिर तुम उसे शरीफ किस वजह से समझते हो?
अरे, इसका अंदाजा तो तुम उसे देखकर ही लगा सकोगे।
यानी इसका मतलब ये है कि वो सूरत से शरीफ मालूम होती है?
अरे नहीं भाई, ये बात नहीं है,
एसपी उकता कर बोला। खैर हटाओ, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके खास खास दोस्तों में से कोई ऐसा आदमी है जिस पर शक किया जा सके?
मैंने हर एक को अच्छी तरह टटोल कर देख लिया है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिस पर शक किया जा सके,
एसपी ने जवाब दिया। उसके दोस्तों में कोई कबूतरबाज है?
हाँ, एक साहब तो हैं,
एसपी कुछ सोचता हुआ बोला।
सिद्दीकी अहमद साहब, रिटायर्ड जज।
कैसे आदमी हैं?
अच्छे आदमी हैं।
मैं जरा उस कबूतर और उसके नाखून पर चढ़े हुए खोल को देखना चाहता हूं। एसपी ने कबूतर मंगवाया जो एक पिंजरे में बंद था। कबूतर तो अच्छी नस्ल का मालूम होता है, शिराजी है।
अरे, मैं कबूतरों के बारे में कुछ नहीं जानता,
एसपी बोला। हमीद उसके नाखून पर चढ़े हुए खोल को देर तक देखता रहा।
वाकई मुजरिम बहुत ही दिमागी मालूम होता है,
फरीदी बोला।
इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा, अब थोड़ा एक जरा कागज तो दो। एसपी ने मेज पर से पैड उठा दिया। फरीदी लिखने लगा। 10,000 रुपए का इनाम उस शख्स को दिया जाएगा जो हिंदुस्तान के मशहूर डाकू राहुल को मुर्दा या जिंदा लाएगा। हम यहां उसकी तस्वीर छाप रहे हैं ताकि पब्लिक उससे होशियार रहे। राहुल उन लोगों में से है जो जरा जरा सी बात पर कत्ल कर देता है। आजकल उसने रामगढ़ को अड्डा बना रखा है। पब्लिक को होशियार रहना चाहिए। फरीदी ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर उस पर लिखी हुई तहरीर के साथ एसपी को दे दी। ये इश्तिहार जितनी जल्दी हो सके छपवा कर बंटवा दो, फरीदी ने कहा। एसपी ने उसको पढ़ा और हैरत से फरीदी को देखने लगा।
मैं इसका मतलब नहीं समझा।
मेरे काम करने के दो तरीके होते हैं, फरीदी ने कहा।
अरे, मगर मैं बड़े अफसरों को क्या जवाब दूंगा,
एसपी बोला। कह देना कि इसमें एक राज छिपा हुआ है।
मगर ये राहुल है क्या मुसीबत, और इस केस से इसका क्या ताल्लुक?
अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, फरीदी ने कहा। और हाँ, देखो, इसके अलावा मुंह से अफवाहें उड़ाने की कोशिश करो कि नवाब ज़ादा शाकिर की मौत में भी इसी राहुल का हाथ है।
भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है,
एसपी बेबसी से बोला। फिलहाल को ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, फरीदी ने कहा। ये इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में मेरा पहला कदम है, एसपी खामोशी से उसे देख रहा था। अच्छा, तो अब हम चलें। फरीदी ने उठते हुए कहा, हाँ मुझे वो अख्तर उज़्ज़मा की बेवा और सदीक़े अहमद के पते तो दे दो।
एसपी ने एक कागज पर दोनों के पते लिखकर फरीदी को दे दिए।
दिलकुशा की तरफ वापस जाते वक्त हमीद ने फरीदी से कहा, आखिर ये राहुल वाली क्या बात थी?
इतने दिनों से मेरे साथ हो मगर अभी तक अक्ल ना आई, फरीदी ने कहा।
अरे मियां साहबजादे, अगर ये ना करता तो जाबिर से हाथ धो लेने पड़ते। तुम जानते हो कि मैं हमेशा मुजरिमों को धोखा देकर काम करता हूं।
तो आप क्या समझते हैं कि जाबिर इस बार भी धोखा खा जाएगा?
हमीद ने कहा।
जरूरी नहीं।
लो तो फिर इससे क्या फायदा?
तो इसका मतलब यह है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं, फरीदी ने कहा।
इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत शातिर है, लेकिन शायद काबू में आ ही जाए।
आपकी आवाज में मायूसी है, हमीद बोला।
हाँ, जाबिर को पकड़ना आसान काम नहीं।
यकीन मानो मैं खुद को उसके सामने स्कूल का बच्चा समझता हूँ। भेस बदलने के मामले में वो तो अपना जवाब नहीं रखता।
तब तो फिर अल्लाह ही मालिक है, हमीद ने कहा।
हमें अपनी जान का खतरा मालूम होता है, मालूम नहीं वो कब वार कर बैठे और हमें खबर तक ना हो।
खैर इसकी तो कुछ परवाह नहीं, फरीदी ने कहा, क्योंकि एक जासूस को हर वक्त मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज तक खुद को जासूस समझा ही नहीं।
नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे जासूस हो, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
खैर हाँ क्यों ना लगे हाथ सिद्दीकी अहमद साहब के यहाँ मिलते चले, फरीद ने कहा।
दिलकुशा जाने के बजाय दोनों एल्बर्ट रोड के चौराहे पर पूरब की तरफ मुड़ गए। सिद्दीक अहमद का बंगला अच्छी जगह पर था। बंगले के सामने एक खूबसूरत बाग था जिसमें जगह जगह कबूतर खाने बने हुए थे। अधेड़ उम्र का एक आदमी सफेद कमीज पहने खड़ा एक कबूतर के पंजे देख रहा था।
सलाम, क्या जज साहब हैं?
फरीदी ने उसके करीब पहुंचकर कहा।
कहकर वो इस तरह चौंका कि कबूतर हाथ से निकलकर उड़ गया।
वो फरीदी और हमीद को सवालिया निगाहों से घूर रहा था।
हम लोग जज साहब से मिलना चाहते हैं।
लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं, वो रौब से बोला, फिर फौरन ही संभल कर कहने लगा, कहिए।
सलाम सलाम, आपसे तो मिलकर बड़ी खुशी हुई, फरीदी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा।
खुशी तो मुझे भी हुई, मगर आप हैं कौन,
सिद्दीक अहमद हाथ मिलाते हुए बोला।
मुझे अहमद कमाल कहते हैं, फरीदी थोड़ा झुक कर बोला, और ये हैं मेरे दोस्त हमीद अहमद, हम दोनों सैर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं।
क्या मुझसे कोई काम है?
जी नहीं, बात यह है कि मुझे भी कबूतरों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है।
जरूर होगी,
जज साहब लापरवाही से बोले।
मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था।
क्या बताया था?
आपके यहाँ शिराजी पामोज बहुत हैं,
फरीदी ने जाली के बने हुए कबूतर खानों की तरफ देखते हुए कहा।
जी हाँ हैं। तो
मेरा ख्याल है कि ऐसे पामोज शायद ही यहाँ किसी और के पास हो।
चापलूसी बंद,
जज साहब ने हाथ उठाते हुए कहा।
मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू वक्त नहीं है, मैं अपने मिलने वालों को ही वक्त दिया करता हूँ।
ठीक है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला, तो फिर हम लोग कब आएं?
मेरे पास वक्त नहीं है।
कोई ऐसी जल्दी नहीं है, हम यहाँ गर्मियों भर ठहरेंगे।
मुझे गर्मियों में भी फुर्सत नहीं रहेगी,
जज साहब झुंझला कर बोले।
तो फिर हमें मजबूरन जाड़ों में भी ठहरना पड़ेगा, फरीदी मुस्कुरा कर बोला।
अरे अजीब आदमी हैं आप।
बहरहाल मेरे एक दोस्त ने एक साहब का पता और दिया था, शायद उनके पास आपके कबूतरों से बेहद कबूतर हैं,
फरीदी ने वापस होने के लिए मुड़ते हुए कहा।
कौन है वो साहब?
नवाबजादा शाकिर साहब।
शाकिर,
जज साहब मुस्कुरा कर बोले।
आप लोग यहाँ कब आए हैं?
कल।
इसीलिए शाकिर से मिलने जा रहे हैं,
जज साहब ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा।
लेकिन मैं तुम लोगों को उसके पास पहुंचा सकता हूं।
जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा, फरीदी ने नरमी से कहा।
तुम क्यों समझने लगे? समझोगे उस वक्त जब हाथों में हथकड़ियां पड़ी होंगी।
यानी
चोर का ही के?
जज साहब गरजे।
जज साहब, जरा तमीज से बात कीजिए।
हमीद आपे से बाहर होकर बोला। अरे खामोश रहो भाई, जज साहब गुस्से में मालूम होते हैं। फरीदी हमीद का कंधा थपथपाते हुए बोला।
तुम लोगों की दिलेरी और सीना जोरी तुम्हें हरगिज नहीं बचा सकेगी।
सीना जोरी?
मेरे कासनी पामोज की मादा को, जिसके सर पर सफेद चोटी है, तुम ही लेकर गए हो ना, और अब शायद जोड़ा पूरा करना चाहते हो। इतना याद रखो कि मैं पुलिस के हवाले किए बगैर नहीं मानूंगा।
जज साहब ने वैसे ही रिवॉल्वर ताने हुए कहा।
या फिर उसे वापस कर दो।
फरीदी ने मुस्कुराकर हमीद की तरफ देखा, जो खड़ा होकर तमाशा देख रहा था।
शायद आपका दिमाग खराब हो गया है।
नहीं हमीद, जज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले वो सफेद चोटीदार कासनी पामोज नहीं देखा था?
फरीदी ने हमीद से फिर कहा। फिर जज साहब की तरफ देखकर बोला,
लेकिन जज साहब, मुझे अफसोस है कि इस वक्त आपका वो कबूतर एसपी मिस्टर माथुर के पास है।
फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है,
जज साहब गरज कर बोले।
मैं कहता हूँ सीधी तरह बता दो, वरना क्या फायदा?
अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ उनके बंगले पर चलिए, फरीदी ने कहा।
ये अजीब मामला है कि एक चोर मुझे एसपी के बंगले पर ले जा रहा है।
अरे आप चलकर देखिए तो सही।
खैर, मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचाने का आदी हूँ।
जज साहब ने यह कहकर नौकर को आवाज दी।
जरा ड्राइवर से कहना कि स्टेशन वैगन निकाले।
जज साहब ने फरीदी और हमीद को स्टेशन वैगन में बिठाया, तीन नौकर साथ लिए और मिस्टर माथुर के बंगले की तरफ चल दिए। माथुर साहब शायद दफ्तर जाने के लिए तैयार थे। वे बरामदे ही में थे कि ये लोग पहुंच गए। फरीदी और हमीद को इस हालत में देखकर कि जज साहब उनके पीछे रिवॉल्वर ताने चल रहे हैं, माथुर साहब हैरत से उछल पड़े।
अरे इसका क्या मतलब है?
माथुर साहब बोले।
ये दोनों चोर मुझे आपके पास लाए हैं।
जज साहब बोले।
चोर?
माथुर साहब की हैरत और बढ़ गई।
हाँ, इन्होंने मेरा एक कबूतर चुराया है और मुझे ये कहकर यहाँ लाए हैं कि वो आपके पास है।
अरे न जाने आप क्या कह रहे हैं, ये दोनों मेरे दोस्त हैं,
माथुर साहब ने कहा।
दोस्त?
जज साहब चौंक कर बोले।
जी हाँ, ये है मुल्क के मशहूर जासूस इंस्पेक्टर फरीदी और ये है उनके असिस्टेंट मिस्टर हमीद।
अरे तब तो बड़ी गलती हुई।
जज साहब उछल पड़े। कोई बात नहीं, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। माथुर साहब से बोला, जरा वो कबूतर तो मंगवा। कबूतर का पिंजरा देखते ही जज साहब उछल पड़े।
यही है, बिल्कुल यही है,
वे चीख कर बोले। लेकिन अभी आपकी खुशी गम में बदल जाएगी, फरीदी ने इत्मीनान से कहा।
क्या मतलब?
इस कबूतर को एक शख्स की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जज साहब उछल कर बोले। फरीदी ने शुरू से आखिर तक सारे वाकयात बताने शुरू किए। जज साहब के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं।
मैं आपसे सच कहता हूं कि मुझे इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं। रामगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं शुरू से ही ईमानदारी की जिंदगी बसर कर रहा हूं। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर उसकी मौत से मुझे क्या फायदा मिल सकता है,
जज साहब ने कहा। यही तो सोचने की बात है। क्या उसके रिश्तेदार में कोई ऐसा है जिसको उसकी मौत से कोई फायदा पहुंच सके, फरीदी ने पूछा।
है तो,
जज साहब कुछ सोचते हुए बोले,
लेकिन उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
कौन है?
उसकी चचेरी बहन नवाब अख्तर रज़मा की बेवा।
तो उस पर शक ना करने की वजह क्या हो सकती है?
ये तो आप उससे मिलकर ही मालूम कर सकेंगे।
खैर, देखा जाएगा। ये बताइए कि ये कबूतर आपको मिला कहां से था?
मैंने एक शख्स से पूरा जोड़ा खरीदा था।
तो क्या दूसरा भी आपके पास मौजूद है?
जी हाँ।
मैं उसे देखना चाहता हूँ।
जज साहब ने ये सुनते ही नौकरों को दूसरा कबूतर लाने के लिए भेज दिया। वो शख्स कहाँ रहता है जिससे आपने ये कबूतर खरीदे थे? फरीदी ने जज साहब से पूछा।
ये मैं नहीं जानता, वो कबूतर लेकर मेरे पास आया था। कबूतर इतने अच्छे थे कि मैंने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की थी।
उसका हुलिया याद है आपको? फरीदी ने पूछा।
जी हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी था लेकिन काफी सेहतमंद और लंबा था। बातचीत से पढ़ा लिखा और शरारती मालूम होता था। घनी मूछें और फ्रेंच कट दाढ़ी थी और नाक के पास एक बड़ा उभरा हुआ सा तिल था। बोलने में कुछ हकलाता भी था।
ये बातचीत हो ही रही थी कि जज साहब के नौकर कबूतर लेकर आ गए। फरीदी ने जेब से चमड़े के दस्ताने निकाले और उन्हें पहनकर कबूतर के पंजों का जायजा लेने लगा। इसके पंजों में तो कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर बाद बोला। फरीदी ने जज साहब से और भी बहुत से सवाल कर डाले लेकिन वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इतना जरूर हुआ कि उसने जज साहब को भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिखे थे जिन पर उसको शक था। कबूतरों के बारे में मुंह बंद रखने की हिदायत करके छुट्टी दे दी गई। आगे क्या हुआ उसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। आप सुन रहे हैं कहानी नकली नाक और इसे लिखा है इब्ने सफी ने।